नारायण 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 राम 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 राम। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़। ये योगारूढ़ के लक्षण बताए गए हैं। पहले कहा था आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है। और वो जो योग आरूढ़ हो जाए उस योगारूढ़ योग रूढ़ योगारूढ़ होने से एक शांति मिलती है। वो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। योगारूढ़ तस्यैव शमः कारण मुच्यते। इसका तात्पर्य कि ये जो योगारूढ़ अवस्था है उसमें राजी नहीं होना है। भोगोगे तो यहां अटक जाओगे। शांति है ना, जैसे भोगों में अटकता है ऐसे तो नहीं बन करीब कर भी वैसा ही। शांति में अगर रमण किया, शांति का भोग किया, शांति में खुश हुए तो कई दिन आपको लग जाएंगे, फिर अरुचि आपसे हो जाएगी। जैसे खेल में बालक की रुचि रहती है, रुपयों में रुचि रहने पर खेल में रुचि आपसे आप मिट जाती है, ऐसे उस शांति में रुचि भी मिट जाएगी। उस शांति ज्यादा रुचिदायक नहीं होगी जब तक उसकी नहीं मिली है, अनुभव नहीं हुआ तब तक शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है। परंतु उस शांति में कुछ दिन रहो तो आपसे आप अरुचि होगी, बस दिन लगेगा कुछ। और उस शांति का उपभोग न करो, शांति से उपरा मरो तो बहुत जल्दी स्थिति हो जाएगी। ये उसमें एक थोड़ा समझना है। अब योगारूढ़ नाम किसका है तो तीन बात बताई। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु और न कर्मसु अनुसज्जते, पदार्थों में क्रियाओं में आसक्ति न हो, ये दो बात बताई। एक बताई कि सर्व संकल्प संन्यासी, सब संकल्पों का संन्यास। तो संकल्प नाम किसका है, ऐसा होना चाहिए ऐसा न होना चाहिए इसको संकल्प कहते हैं। ऐसा मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा संयोग होना चाहिए ऐसा संयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका नाम है संकल्प। तो इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो, और भीतर से ये आग्रह ने भी यूं होना चाहिए उन्हें होना चाहिए, उनका सर्वथा त्याग कर दिया, योगारूढ़ हो गए। तो योगारूढ़ किसका नाम है, योग में आरूढ़ हो जाए, योग में स्थित हो जाए, योग से चलित मना होता है तब वो योग भ्रष्ट होता है। योग मारू वो चलित हो गया तो योग भ्रष्ट हो गया, और हम स्थित रहा तो योग भ्रष्ट नहीं हुआ। तो योग नाम किसका है, योग के कई अर्थ है पर गीता का खास योग है समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा है। समत्वम योग उच्चते। तो समता है इसका न योग, तो समता में स्थित रहना। तो नहीं यदा ही नैन्द्रिय से, इंद्रियों के अर्थों में भी आ सकती नहीं और क्रियाओं में भी आ सकती नहीं। पदार्थ भी मिले न मिले, क्रिया भी और न हो, तो कोई आग्रह नहीं। नहीं बोलते से कृषि न अर्थ न अकृति नहीं अकर्ष, न करने से कोई आग्रह है न करने से कोई मतलब है। और किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है नहीं थे, नहीं से कृषि न अर्थ न अकृति नहीं अकर्ष न सहस्य सर्वभूत सुख से दर्थ व्यवहार से। तीन बात इसमें बताई। अब ये श्लोक ठीक समझना है कि यदा ही नैन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसर्जति, इनमें आसक्ति न करे। क्यों नहीं करे? अब ध्यान देकर आप लोग कृपा कर सुनो और फिर संदेह को जो पूछो। जितने पदार्थों के संबंध है, ये संबंध आगंतुक है, मानो संयोग है और वियोग है। हर एक पदार्थ का संयोग है और वियोग है, वस्तु का संयोग है और वियोग है, व्यक्तियों का संयोग है और वियोग है, बातों का संयोग है और वियोग है, ऐसे क्रियाओं का करना क्रियाओं का संयोग है, क्रिया का समाप्ति हो जाना क्रियाओं का वियोग है। ऐसे संकल्प है, सर्व संकल्प, तो संकल्प संकल्प का भी संयोग और वियोग होता है। संकल्प पैदा हुआ संयोग हुआ, संकल्प मिट गया वियोग हो गया। तो संयोग और वियोग पदार्थों के साथ ही है, क्रियाओं के साथ है, मानसिक भावों के साथ ही है। कैसे ये सर्व संकल्प सन्यासी क्यों कहा? जब इंद्रियों के अर्थों में क्रियाओं में आसक्ति नहीं है तो संकल्पों की आसक्ति रही नहीं, फिर सर्व संकल्प क्यों कहा? तो देखो, शरीर वांग मनोवीर यत कर्म प्रारभते नर, मनुष्य जब कर्म का आरंभ करता है, शरीर से मन से वाणी से इनसे संबंध करता है, तो ये क्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं होती है, वाचनिक क्रियाएं होती है, इंद्रिय क्रियाएं होती है, अंतःकरण क्रियाएं होती है। तो ये क्रियाएं हुई, उन क्रियाओं में आसक्ति न हो, तो आसक्ति कब न हो? क्रियाएं हो चाहे क्रियाएं न हो, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग हो जाए चाहे वियोग हो जाए, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें एक संयोग और वियोग की बात कहता हूं, विशेष ध्यान देने की। आपका और हमारा मिलन हुआ, ये हुआ संयोग, और आपका और हमारा पिछड़ना हो गया, ये हुआ वियोग। ये तो सीधी बात है। इन दोनों में अगर विचार किया जाए, संयोग में और वियोग में, तो संयोग है वो अनित्य है और वियोग है वो नित्य है। ये बात खास समझने की है, खास समझने की बात है। संयोग और वियोग में आपका हमारा मिलन हुआ और विछड़न होगा, तो मिलने का तो विछड़ना जरूर होगा, पर बिछड़ा उसका हमेशा योग संयोग हो जाएगा, ये नियम है, ये नियम नहीं। तो वियोग अवश्य होगा, वो वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। कैसे नित्य है वियोग? पहले आप नहीं मिले तो वियोग रहा, और आप बिछड़ गए तो वियोग रहा, तो वियोग तो सही रहा ना। और जितनी देर आप मिले हैं उतनी देर भी वो संयोग वियोग में ही बदलता है निरंतर। जैसे एक आदमी 50 वर्ष लखपति रहा, और 1 वर्ष लखपति होने को हो गया, 1 वर्ष हुआ है लखपति हो गया, तो 50 वर्षों से 1 वर्ष कम हो गया ना, तो वियोग हुआ ना वर्ष भर का, तो वियोग संयोग काल में भी वियोग है और पहले अभाव में भी वियोग है और फिर अभाव में भी वियोग है, तो वियोग नित्य हुआ। और संयोग है उसमें होता है सुख, तो ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, दुखों के कारण है जितने संबंध जन्य भोग है, संबंध जन्य जितने सुख है, सबके सब दुख के कारण है, दुख पैदा करने वाले हैं दुखों के कारण। तो संयोगों से ही दुख होता है, वियोग में दुख नहीं होता, वियोग में दुख नहीं होता, दुख संयोग से ही संस्पर्श जाग होगा। संबंध जन्य भोग है वो दुखों के कारण है, संबंध विच्छेद होने पर जो सुख है वो अनंत सुख है, अपार सुख है, उस सुख का वियोग नहीं होता क्योंकि नित्य है। और उसका नाम है गीता ने योग का समत्वम योग, समता आप साफ रहेगी। जब संयोग वियोग में भी वियोग, संयोग में भी वियोग, फिर वियोग में भी वियोग, तो वियोग नित्य हुआ, तो वियोग जहां संसार का हुआ परमात्मा के साथ योग नित्य हुआ, समता में स्वतः स्थिति हो गई। तो समत्वम योग उच्चते, ये गीता के दर से योग हुआ, समता में स्थिति है, कल बता रही है यही उत्तर सर्गो ये साम्य स्थित माना, साम्य में स्थित हो गया। साम्य के में स्थित होना क्या, इस साम्य को आदर दिया गया, समता हरदम रहती है, पहले वियोग में भी समता है और अंत वियोग होने में भी समता है, और जिस ऋतु में संयोग है उस समय भी वियोग हो रहा है तो समता में द्वितीय स्थिति है ही। तो नित्य स्थिति ये नित्य योग है, नित्य जो समता ये नित्य योग है, और ये संयोग अनित्य है, संसार के संयोग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग है उसका नाम है योग। तो वो कैसे होगा के समत्व हुआ, दुखों के संयोग का वियोग समता हुई, तो दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग हुआ, तो ये नित्य योग है। अब उस नित्य योग में स्थिति होना इसका नाम योगारूढ़ होना है। तो योगारूढ़ कब होंगे, यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ हो गए। अब जितने संयोग है तो इंद्रियार्थ इंद्रियों के विषय है, वो विषयों का भी संबंध होता है, पहले संबंध नहीं, भूख लगी तो भोजन का संयोग हुआ, भोजन करते करते रुचि नहीं हुई तो वियोग हो गया, अब तृप्ति हो गई। तो पहले वियोग है पीछे वियोग है, भोजन करते हुए भी वियोग में ही बदल रहा, संयोग है वो वियोग में ही बदल रहा है, तो वियोग नित्य रहा। जितने भोग होते हैं सबके सब वियोग में बदल रहे हैं, पहले अभाव है पीछे अभाव है, और भाव के समय भी अभाव ही मुख्य है, ये तो आगे समझ में। अब उन आसक्ति की अगर अभाव में क्या आसक्ति करे, यहाँ अभाव है अभाव में क्या आसक्ति, तो आसक्ति है ही नहीं। तो वियोग में भी वियोग, संयोग में भी वियोग, तो वियोग है वो नित्य है। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का जहाँ सर्वथा वियोग है उसको योग कहते हैं। दुख किसमें होता है कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं होती, अरे आद्यंत अंत कौन थे न तेसु रमते बुध तेसु न रमते, ये युगारूढ़ होना, रमन कर तो युगारूढ़ नहीं होंगे, संयोग में फंस जाओगे, संयोग में सुख ले लोगे तो युगारूढ़ नहीं उस होगे। इस वास्ते कहा कि भाई इसमें सुख है नहीं, न तेसु रमते बुधा, बुधा विवेकी उसमें रमण नहीं करता, क्योंकि रमण करना ही दुखालय है, ये दुख योने होते दुखालय मसाशोतम, इससे उपराम हो जाते हैं। तो बुध है विवेकी है वे, तो क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है, और पदार्थों के संयोग का भी अंत होता है, तो वो अंत है इनका वो है नित्य। तो योग तो हुआ परमात्मा साथ में, नित्य नित्य हुआ योग, फिर संसार के साथ संयोग अनित्य हुआ। ये तो बात आगे ना समझ में, क्रिया पदार्थ वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति कुछ भी कह दो, पर इनके साथ वियोग था, वियोग रहेगा और संयोग अवस्था में वियोग में ही बदल रहा है, तो वियोग ही नित्य है। ये बात खास समझने की है, ये वियोग ये नित्य योग है। संसार से जहाँ वियोग है, परमात्मा का योग आपका नित्य है, परमात्मा है आपकी, चाहे आप समझें चाहे ना समझें, आपके ख्याल में आवे चाहे ना आवे, परंतु आपकी परमात्मा स्थिति है। संसार के साथ जितना संबंध मानते हैं उतना परमात्मा से वियोग है, नित्य योग से वियोग है, और यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है सिवाय धोखे भी और कुछ नहीं है। ऐसे संयोग में वियोग होगा, संयोग सबके सब वियोग माने संयोगा वियोगान्ता मरणान्तम ही जीत हो, तुम जीने आए हो मरने के लिए, संयोग सब वियोगान्त, सब संयोग जितने सब सुख हुए सब सब वियोग अंत वियोग है इनका, इनका सबका वियोग है। तो वो वियोग होने पर जो योग होता है परमात्मा के साथ वो नित्य योग है, वो नित्य योग सबको प्राप्त है, संपूर्ण जीव मात्र को सदा प्राप्त है। वे संयोग में फंस जाते हैं, संयोग जन्य सुख में फंस जाते हैं, इसलिए उस नित्य परमात्मा के साथ संबंध है, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती, उनका अभाव नहीं हुआ है। इस बात से शंकर सहज स्वरूप संभारा, सहज स्वरूप रह दिया, तो वो उसमें वो योग सबका है, नित्य योग, वो नित्य योग, नित्य योग है, उसका अनित्य कैसे हो, किसी से भी वियोग नहीं उसका, भोगी से भोगी, रागी से रागी, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, मुक्त से मुक्त, बद्ध से बद्ध, सबके साथ योग तो नित्य है, इसमें कोई संदेह तो बोलो, नित्य योग होगा, तो ये नित्य योग है। बस नित्य योग की प्राप्ति करना ही गीता का खास सिद्धांत है, नित्य योग प्राप्त क्या करना, कि अप्राप्त को मिटा देना ही प्राप्त करना, क्यों प्राप्त तो है ही, अप्राप्त के साथ संबंध किया है, इसी से नित्य प्राप्त की तरफ से हम विमुख हो गए हैं बस, और नित्य प्राप्त योग का तो अभाव हुआ नहीं, योग तो है, योग का क्यों है, केवल हमारी दृष्टि उधर न रहने से, संयोग जन सुख में फंस जाने से नित्य योग का अनुभव नहीं हुआ। तो ऐसा नित्य योग सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, ये आप मूर्ख से मूर्ख, विद्वान से विद्वान, समझदार से समझदार, बेसमझ समझ, नित्य योग का वियोग कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं है नित्य योग का। और संयोग का वियोग था, वियोग होगा, वियोग हो रहा है, इसका कभी संयोग रह सकता नहीं, वियोग में ही बदलेगा, और नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं। संयोग के संयोग में मान लो संयोग को आप नहीं रख सकते, और वियोग आपको छोड़ नहीं सकता, निरंतर वियोग होगा, भोगों के बीच में रचे पचे का भी नित्य योग से वियोग नहीं होता है, उन भोगों में रचे पचे रहने से आपकी वृत्ति उधर रह जाती, फंस जाते हो, पर नित्य योग का वियोग नहीं होता, नित्य वियोग अखंड योग है, अखंड सत्य है, सिद्ध अखंड योग है, इस बात से उसका नाम है नित्य योग, इसी को गीता ने योग कहा, सिद्ध सिद्धियों सम भूतवा समत्वम योग उच्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दो जगह की परिभाषा है योग की, ये योग हुआ नित्य योग। अब संयोगों का वियोग होता है, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के अर्थों का संबंध होगा तो वियोग मुख्य रहेगा, ऐसे क्रियाएं होगी उनका भी वियोग मुख्य रहेगा, क्रियाओं का पहले अभाव है पीछे अभाव है, और क्रिया करते हुए भी अभाव में जा रहा है, जैसे हम व्याख्यान पहले नहीं देते थे, अब व्याख्यान देने लग गए और फिर व्याख्यान समाप्त हो जाएगा, तो व्याख्यान जितना देते हैं वो भी समाप्ति में ही जा रहा है, व्याख्यान व्याख्यान में नहीं जा रहा है, व्याख्यान के अभाव में जा रहा है। अब हमारे 10-12 मिनट बाकी रहे तो इतना ही ये अवस्था है, फिर बात भर जाएगी, या क्रिया तो मिल जाएगी, क्रिया का अभाव हो जाएगा। तो क्रिया हरदम अक्रिय अवस्था में जा रही है, ये विषमता हरदम समता में जा रही है, ये संयोग वियोग में बदल रहा है निरंतर। तो संयोग अनित्य हुआ, वियोग नित्य हुआ। उस वियोग के साथ जो परमात्मा का संयोग नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य योग है मात्र जीवों का, ये योगारूढ़ अवस्था हुई। अब इस योगारूढ़ में सीधी बात है कि संकल्पों का भी वियोग होता है। कुछ भी संकल्प पैदा हो जाएगा, अब ऐसा करना है हमारे को, इतनी विद्या पढ़ना है, इतना धन इकट्ठा करना है, इतना महिमा प्राप्त करनी है, इतना यह करना है, ये संकल्प है। और ऐसा नहीं हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये नहीं हो जाए, हो जाए दोनों वियोग में बदल, वियोग में बदलेगा, हो जाएगा तो वियोग में बदलेगा, और नहीं है तो वियोग में है ही। और ऐसा नहीं होना चाहिए उसका भी वियोग है, और नहीं होगा तो वियोग है। नित्य तो योग ही रहेगा, इसका तो वियोग ही नित्य रहेगा, और परमात्मा का योग नित्य रहेगा। संपूर्ण संकल्पों का भी तो अभाव होता है, हर एक संकल्प होता है उसका अभाव हो जाता है, चाहे छोड़ दो चाहे पूरा कर दो। संकल्प पूरा करो तो संयोग नहीं रहेगा, और संकल्प पूरा नहीं करो तो नहीं रहेगा। ये सर्व संन्यासी स्वतः सिद्ध आप है, तो स्वाभाविक आपकी स्थिति योग में है। सबकी जानकार अनजान, पापी पुण्यात्मा, मुक्त और बद्ध, सबकी सिद्ध योग में स्थिति है। इस वास्ते योग नित्य है और संयोग अनित्य है। अब अनित्य में आप फंस जाते हैं, संयोग में रस लेने लगते हैं, तो नित्य योग से विमुखता हो जाती है, नित्य योग का वियोग नहीं होता, नित्य योग का वियोग नहीं होता, विमुखता होती है। तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही के जन्म कोटि अग्नि तब ही, जब योग के सन्मुख हो जाओगे तो अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप बेचारा कहाँ टिकेगा, पाप तो विमुखता में ही टिकता है। नित्य योग के सम्मुख ने पाप का नित्य योग रहेगा, पाप होता है, पाप पैदा ही नहीं, पाप तो पैदा होता है संयोग में सुख लेने से। इतने संयोग में सुख हुए तो दुख योने है, पापों के कारण है, पापों के योने है, दुखों के भी योने है, संयोग देने सुख है। तो संयोग सब अनित्य है, वियोग नित्य है, और वियोग है वो परमात्मा के साथ नित्य योग। तो हिदाई नेन्द्रियार्थे सु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। उस समय में योगारूढ़ है। अब इस योग की प्राप्ति के लिए आरूढ़ शोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण है। तो कर्म के कारण, कर्म करते करते जब सबका वियोग हुआ तो योग रूढ़ हो जाओगे। तो पहले कर्म करना कारण हुआ, तो कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति होना उसका नाम कर्म योग, क्योंकि कर्मों की समाप्ति हो गया योग दित रहेगा, क्रियाओं की समाप्ति, पदार्थों की समाप्ति, संयोग की समाप्ति, परिस्थिति की समाप्ति, तो नित्य योग रहेगा कि नहीं, इसको नाम कर्म योग, करने करने के द्वारा कर्म योग हो गया। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे तो संसार से संबंध टूटेगा, वो संबंध टूटेगा उतना संसार का होगा वियोग, और जितना वियोग होगा उतना वास्तव में परमात्मा के साथ संबंध जागृत हो जाएगा। अभी परमात्मा के साथ वियोग नहीं है, सबका नित्य योग है परमात्मा के साथ। जैसे समता के साथ नित्य योग है, विषमता के साथ संबंध बनाया हुआ है, ऐसे ही परमात्मा के साथ योग नित्य है संपूर्ण प्राणियों का। कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसका परमात्मा से वियोग होता हो। कैसे होगा, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है ज्यों कहते हो और आप है ज्यों कहते हो, तो उसका योग तो नित्य योग है। संसार को आदर दिया, परमात्मा से विमुख हो गए, ये वहां वियोग हुआ। अरे वो परमात्मा वियोग करके आपसे विमुख होते नहीं, जब आप चाहो तभी ये था माम प्रपद्यन्ते। तो ये हुआ भक्ति योग, भगवान का भजन करते हुए समता में स्थिति हो गई, परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो गई, तो नित्य योग की प्राप्ति हो गई। ऐसे ज्ञान योग के द्वारा संसार का वियोग किया कि एक वो चीज रहने वाली और रहने वाली नहीं है, तो रहने वाली नहीं है, नहीं रहने वाली से वियोग कर लिया तो वियोग तो हो ही रहा है। केवल आप अनुभव कर लो कि जितना जितने पदार्थों का संयोग है ये पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा और प्रत्येक क्षण वियोग में बदल रहा है, तो संपूर्ण पण वियोग है, परंतु इनका जानने वाला साक्षी सबको जानने वाला है जो का त्यों रहता है, तो है जो का त्यों रहता है इसमें स्थिति होगी योग में। और वह विचार के द्वारा संयोग संसार के संयोग का वियोग किया इसका नाम हुआ ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा योग हुआ, भक्ति के द्वारा योग हुआ, कर्म के द्वारा योग हुआ, तो कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, योग में सब समाप्त हो जाते हैं, योग में सब एक हो जाते हैं। तो पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अरट की भय एक ही ठोर, तो पहुंचे में एक योग में हो जाएगा। तो योग वास्तव में नित्य योग की प्राप्ति है, तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। अब कर्ण सापेक्ष यहाँ कहाँ आवेगा बताओ, कोई भी कार्य किसमें कैसे आवेगा, स्वप्न में भी संबंध नहीं कार्य किसी, कर्ता का, कर्म का, कर्ण का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का, किसी का भी संयोग कभी हुआ नहीं। क्यों? ये तो सब कर्म अनुसार ये कर्म में समझे सब सब के सब, यानी कि सदा वियोग है, तो संपूर्ण कारकों का वियोग है, कर्तृत्व भी नहीं है, कर्मत्व भी नहीं है, कर्णत्व भी नहीं है, संप्रदाय नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है, ये तो सब प्रकृति के कार्य में रह गए। इनका शब्द वियोग होता है, करता है उसका वियोग होगा, कर्म का वियोग होगा, कर्ण का वियोग होगा, संप्रदान का वियोग होगा, अपादान का वियोग होगा, अधिकरण का वियोग होगा, तो वियोग तंत्र में ठहरेगा, तो इनका कार्य कोई नहीं है उसमें। तो कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष साधन वो समझ में नहीं आता, कहते ये झूठी बात है। अरे झूठी बोल सकती है, अंत में ठहरेगी यही बात, अंत में है जो ही ठहरेगी, उसे और तरह हो नहीं सकते। तो ये संपूर्ण कर्णों का अभाव का, कारकों का, ये कारक है, वो कर्ता कर्म कर्ण समझ, इनको कारक कहते हैं। कारक किस या क्रिया के करने वाले, क्रिया जनकत्व कारकत्व, क्रिया जनक होते उसको कारक कहते हैं, कारकों का सब का अभाव है। तो कर्ण निरपेक्ष नहीं, कर्तृ निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, संप्रदान निरपेक्ष है, अपादान निरपेक्ष है, अधिकरण निरपेक्ष है, इनकी अपेक्षा है ही नहीं। कर्ण निरपेक्ष स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वतः नित्य योग है और इसका नित्य वियोग है, संयोग का वियोग नित्य है और नित्य योग नित्य तत्व का योग स्वाभाविक स्वतः नित्य योग है। और फिर इंद्रिया से न कर्मसु, यदा बताया जिस काल आप चाहो उस समय को, यदा तदा का तात्पर्य क्या कि जब आप कर्म में आसक्ति नहीं करे, पदार्थों में भोगों में आसक्ति नहीं करे, संकल्प में आसक्ति नहीं करे, जिन काल में उस समय योग रूढ़ हो गया। अब वो आप एक दिन में कर लो, एक घंटा में कर लो, एक उम्र में कर लो, कई जन्मों में कर लो, वो आपकी मर्जी है। कर्म के द्वारा योग में बसे कर्म योग होगा, भक्ति के द्वारा योग में बसे भक्ति योग हो गया, ज्ञान के द्वारा योग बसे ज्ञान योग हो गया, योग में सब एक हो गए। इस वजह से सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योग ही रिपगम्य थे, एक अंग सांख्य योग सांख्य योग पृथक बारह प्रबंधी नर पंडिता एक वो प्यास थे सम्यक। तो दो निष्ठा जो योग निष्ठा सांख्य निष्ठा दो हुई, वे निष्ठा से आगामी तत्व मिलने का एक हुआ, उस तत्व में स्थिति होना है और वह स्वतः सिद्ध सबकी है, केवल नित्य स्थिति को संभालना है। तो शंकर स्वरूप संभाला, अब इसमें कोई शंका होती हो, किसी तरह कोई शंका होती हो,
भगवान करते हुए आरोप तो निरुदन कर्म कारण है, ये पहले कह दिया, इसे यदा इंद्रिया तो जो योग के साधन में है
हाँ।
वो तो कर्म सापेक्ष मन
तो साधन तो है ही, तो कर्म कारण है उसमें, तो कर्म में सब होंगे, कर्म में कर्ता भी होगा, कर्ण भी होगा, संप्रदान भी होगा, अपादान भी होगा, अधिकरण सब होंगे, तो कर्म कारण है, कर्म है वो योग में समाप्त होता है, कर्म कर्म में समाप्त होगा तो वो तो जन्म मरण होगा, जब तक योग की प्राप्ति नहीं तब कर्म तो उत्पन्न उत्पन्न जन्मना मरना जन्म कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म उस जन्म जन्म होगा, इस वास्ते कर्म है एक कर्म योग है, तो कर्म योग में तब बदलेगा जब संस्पर्श जाप होगा, इनका त्याग करोगे
तो योग का जो साधन है
हाँ
साधन में तो कर्म सापेक्ष होगा,
बिल्कुल होगा, इसमें कहना ही क्या है, नहीं तो कर्ण नाम भी कैसे होगा, पर कर्ण कारण निरपेक्ष, अब आप ध्यान देना, कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ, कर्ण निरपेक्ष होता है कर्ण का संबंध छोड़ने से, पहले से ये मतलब कि कर्म तो केवल कर्म करने में कारण साधन है, आगे साधन योग में साधन नहीं है, योग में तो वियोग साधन है, तो कर्ण निरपेक्ष हो गया, अब इनको कारण लिए बैठा हो तो आरूढ़ शोर इसमें तो रहेगा, आरूढ़ शोर तो कर्म कारण है, कर्म बिना कैसे हुआ, तो इसमें तो कर्म कारण है, कर्ण भी होगा, कर्म भी होगा, संप्रदान उपादान अधिकार सब कारक आएंगे, क्रिया आएगी, पदार्थ आएंगे, व्यक्ति है, वस्तु, घटना, परिस्थिति आएगी, तो इनमें तो कर्म रहेंगे, तो कर्म सापेक्ष साधन करते करते भी वो पहुंचोगे, और पहले से ही कर्ण निरपेक्ष हो जाएगी, कर्म के संबंध नहीं, किसी किसी कार्य की जरूरत नहीं, ये आपने समझ लिया, ये है कर्ण निरपेक्ष साधन, इस बात में समझ में नहीं आया तो पूछो, कर्ण निरपेक्ष कर्ण की अपेक्षा नहीं है
इसमें, शरीर बंदा शरीर आया इसमें जगत में संसार में बना हुआ है, तो एक चक्र भी हो गया हमारे लिए कि ये तो सदा योग में जाएगा, जाएगा और जब शरीर छूट जाएगा तो आत्मा का संयोग परमात्मा से है ही,
शरीर छूटता नहीं बाबा, छूल छूटता है, सूक्ष्म नहीं छूटता है, कारण नहीं छूटता है, बदलता है, कारण तीन तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो कारण के साथ में वियोग उसका नहीं होता, वो मुक्त होने से ही होता है, परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से ही होता है, नहीं तो बदलता है, नाश नहीं होता, ये शरीर तो स्थूल नष्ट हो जाता है, तो शरीर बदलने पर परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर स्थूल ही नहीं है, सूक्ष्म है, ये कारण और है, कारण शरीर महाप्रलय में भी रहेगा, उसका लेकिन नाश नहीं होता, ज्ञान होने से नष्ट होता है, नहीं तो ज्ञान है वो कर्म सापेक्ष नहीं है, वस्तु सापेक्ष है, ये जो वस्तु है ध्यान देना, वस्तु है हमें वस्तु का कोई कोई वस्तु है, ये जो ज्ञान हुआ है ये ज्ञान कर्म सापेक्ष नहीं है, ज्ञान करना पहले पहले इसकी तरफ दृष्टि डालना ये तो कर्म सापेक्ष, पर ये वस्तु कर्म सापेक्ष नहीं है, ऐसे परमात्म तत्व कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म योग में कर्म सापेक्ष कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए, तो न कर्म नाम अनारंभ आने से कर्मों के आरंभ किए बनने से नहीं होगा, और न सुनने से ना कर्मों के त्याग से भी नहीं होगी, न सुनने से दिन से न कर्मों का अनारंभ से, कारंभ कब होगा कि कर्म में कर्म आरंभ होगा और कर्ण रहित में समाप्ति हो जाएगी, तो कर्ण रहित कारण कर्ण इसमें है ही नहीं, कोई कारक नहीं है, चुप हो जाओ, ये है कारण निरपेक्ष साधन, अब बोलो खूब बोलो शंका, जिसकी भगवान में रुचि उस भक्ति योग सरल है, जिसकी सेवा में रुचि है लोगों को काम करने में उसको कर्म योग है, और जिसका विचार में है सकती है गहरे विचार करो उसके लिए ज्ञान योग है, तीनों का फल एक होगा, ये अधिकारी है, वो वही कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग कहते हैं। बोलो नारायण 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 नारायण
कैसे विचारने से स्थिति हो जाएगी, विचारने से स्थिति हो जाएगी।
बिल्कुल विचारने से अभिचार नष्ट हो जा रहा, अभिचार नष्ट हुआ संसार नष्ट हुआ। संसार तो अभिचार से ही सिद्ध है, विचार से तो सिद्ध होता नहीं। न रूप में से तो उपलब्ध से मिलता ही नहीं, विचार कर से खत्म हो जाएगा। अभिचार सिद्धा माया है, विचार सिद्ध नष्ट हो जाएगा। गोविंद गोपाल की जय हो।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 वैशाख शुक्ल सप्तमी तदनुसार 1 मई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम में हुआ। राम।